करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए, स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए, पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तेर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे। वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन है आया, यही फरिश्तों की ये दुनिया पहने प्रकाश में काया, स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन है आया, यही फरिश्तों की ये दुनिया पहने प्रकाश में काया, सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यह ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई, आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई, हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर, सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पे, सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण की पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी, सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण की पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी, खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए दे, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे, हाथ में हाथ लिए बाबा।
आज हमको रजनी बहन ने सौभाग्य दिया है नागपुर के पूरे सब जोन को ममा के विषय में कुछ बातें बताई जाएं, क्योंकि जून मास आते ही सबके मन में एक तपस्या की लहर उत्पन्न होती है। कैसे मम्मा ने अपनी स्वस्थिति को बहुत जल्दी जल्दी संपूर्ण और संपन्न स्थिति में परिवर्तन किया, क्योंकि हम सब मम्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सुना भी है, लेकिन जिससे प्रीत होती उनकी बातें जितना भी सुने ऐसा लगता है सुनते रहे। तो हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे इस जीवन की फाउंडेशन जो है मम्मा बाबा के द्वारा डाली गई। दिल्ली में जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, हमारे माता पिता के साथ जब हम रजौरी गार्डन सेंटर पर जाते थे, हर 15 दिन में मम्मा बाबा आते थे। अभी हम सबको वो गीत याद आता है, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, फिर भी हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे साइंस के साधनों से मिल रहे हैं, लेकिन एक समय था मम्मा बाबा की गोद लेने का भी बच्चों को बहुत बड़ा सौभाग्य कहें, लॉटरी कहें, वो प्राप्त हुई। अभी याद भी आता है तो भले हम छोटे थे, लेकिन मम्मा बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर रहा और मम्मा बाबा की गोद प्राप्त हुई, वो स्पर्श मिलना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जब हम विदेश में जाते हैं ना, तो ये अनुभव सुनते ही विदेशी लोग पूछते आपको, हम टच कर सकते? मैं पूछती टच करने से क्या होगा? नहीं, वो वाइब्रेशन मिलेंगे मम्मा बाबा के। तो देखो उन बच्चों की तड़फ देखकर लगता है हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो हमने उनकी पालना भी प्राप्त की, उनके हाथ से टोली भी खाई। तो ऐसे मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि मैं सभी बड़ी दादियों के साथ में उनके अनुभव युक्त बातें भी हमने सुनी है और अनुभव भी की है। विशेष जानकी दादी के साथ पुणे में 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला, तो दादी जी हमें मम्मा बाबा की बातें सुनाकर पालना देती थी। तो मम्मा की क्या विशेषता थी जो मम्मा नंबर 1 में चली गई? एक तो मम्मा का बाबा के प्रति अटूट स्नेह था, बहुत श्रद्धा थी मम्मा को, कभी भी बाबा को साधारण रूप में नहीं देखती थी। ये कूलर चला क्योंकि मम्मा हमेशा बाबा के तन में शिव बाबा को अनुभव करती थी। बच्चे भले साधारण रूप में देखते थे, थोड़ा बाबा की बातों पर उतना कभी कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मम्मा दृष्टि के द्वारा समझा देती थी कि आप किससे बात कर रहे हो, कौन है आपके सामने। क्योंकि एक बार बाबा ने मधुबन में बच्चों से पूछा, बच्चे आज कहाँ चलेंगे? तो देखो मम्मा कैसे बाबा के प्रति रिगार्ड बिठाती थी। तो सबने अपना अपना बाबा को इच्छा सुनाई कि हम टोड रॉक पर जाएंगे, फलाने पहाड़ पर जाएंगे, डैम पर जाएंगे, अचलगढ़ जाएंगे, कोई दिलवाड़ा मंदिर जाएंगे। तो बाबा ने कहा, मम्मा आप डिसाइड कर लो बच्चों के साथ कहाँ चलना है। तो मम्मा बहुत गंभीर थी, बहुत प्यार भी देती थी और गंभीरता की मूर्ति थी। मामा बहुत प्यार से सभी को दृष्टि देते हुए पूछा, आप सब जानते हो किसने पूछा आपको कहाँ जाना है? सब लोग एकदम शांत हो गए कि हमसे शायद गलती हो गई है। मम्मा ने कहा, भगवान से हमने क्या वायदा किया है, जहां बिठाओगे वहीं पर बैठेंगे, जो खिलाओगे वो खाएंगे, जहां ले जाओगे वहां चलेंगे। तो आपको बाबा को कहना चाहिए था, बाबा आप हमें जहां ले जाना चाहते हम वहीं जाएंगे। भगवान का कुछ प्लान होता है, वो अगर हमसे पूछता है, वो हमें रिगार्ड दे रहा है, तो हमें भी भगवान का उतना रिगार्ड रखना चाहिए कि बाबा की जो इच्छा है वो तो समझो कहां ले जाना चाहता है। तो इस तरह से बच्चों को बहुत प्यार से मम्मा के अंदर सिखाने की भावना थी। वैसे मम्मा की जीवनी के बारे में तो हम लोग शुरू से तो मम्मा के साथ नहीं जुड़े ना, हम केवल 1957 से ज्ञान में आए, लेकिन उससे पहले की बातें, जैसे हमारी मनोहर दादी बहुत प्यार से मम्मा की बातें सुनाती थी, मनोहर कहानियां। तो मम्मा कैसे आई, तो बताती थी मम्मा की माँ और मौसी जब बाबा के क्लास में आते थे तो उनको लगता था बहुत अच्छी बातें सुनाते बाबा, लेकिन हमको तो याद ही नहीं रहता है, बाकी सब थोड़ा पढ़ाई लिखाई की हुई तो लिख लेते हैं। तो मम्मा को ये बोल करके कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम हमारे साथ चलो, वहां बाबा बहुत अच्छी बातें सुनाते, तो तुम थोड़ा नोट करके फिर हमको घर में आके सुनाना। तो मम्मा की जीवन में आज्ञाकारी का गुण लौकिक जीवन से ही था, तो माँ की बात सुन करके वो रेगुलर बाबा की क्लास के नोट्स लिखना और फिर उनको सुनाना, रिवाइज करना। लेकिन आप जानते हैं कि जो माताएं होती हैं ना, उनको थोड़ा मोह होता है, तो उनका इच्छा ये नहीं थी कि मेरी बेटी समर्पित हो जाए या शादी ना करे, लेकिन वो तो उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी और ढूंढ के भी फिक्स कर दिया था कि इसकी शादी होगी। तो जब मम्मा बाबा के पास आई तो बाबा ने सभी को कहा, भले वो फैशनेबल थी, बहुत सुंदर थी, ये तो जगत की माँ बनेगी, जगदम्बा है, सरस्वती है। मम्मा को उस समय ऐसा लगता था कि बाबा मेरे को ऐसे ही प्यार से बोलता है ताकि मैं बाबा की बन जाऊं, मैं कहाँ बनूंगी मातेश्वरी। लेकिन बार बार बाबा कहते रहते थे। तो एक बार बाबा, मम्मा और प्रकाशमणि दादी झूले पर बैठे थे, बाबा ने कहा, मम्मा क्या सोचती हो, बाबा की बाबा को अपना जीवन समर्पित करोगी या नहीं? तो मम्मा एक दो बार सुनकर के मौन में रही। एक बार उन्होंने कहा, बाबा मेरी एक नेचर है, मैं जिस व्यक्ति को वचन देती हूँ ना, मैं निभाती हूँ। जिस लड़के से मेरा रिश्ता हुआ है वो किसी और से शादी नहीं करेगा। उसने कहा, मैं करूँगा तो तेरे से, नहीं तो नहीं करूँगा। तो मैंने उसको वचन दे दिया है, अभी उसको कैसे दुख देना। तो बाबा उससे पूछते थे, तुम पीतांबर वाले से शादी करोगी या पैंट शर्ट वाले से? अब मम्मा कंफ्यूज भी होती थी। फिर बड़ी दादी ने बोला कि मम्मा आप मनुष्य की बात को मानेंगे, भगवान की बात को मानेंगे, वचन किसको देना चाहिए? उस दिन मम्मा ने बाबा को हाथ में हाथ दिया कि बस अब मैं आपकी हो गई, अब मुझे उस दुनिया में जाना ही नहीं। तो मम्मा जो है उस दिन से बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई, जैसे एक ड्रेस में आई और बाबा के पास रह गई। देखो हम यज्ञ में कई बार बहुतों को ये संशय आता है कि केवल धनवानों की कदर है, गरीबों की क्या कदर है। तो बाबा ने देखो माता पिता जो हमारी जोड़ी ऐसी आदर्श रूप में रखी, बाबा सब कुछ अपना चल अचल संपत्ति सहित समर्पित हुए और मम्मा बिना कौड़ी एक पैसा भी नहीं लेकर आई और वो महालक्ष्मी बन गई। तो ये एग्जाम्पल है, क्योंकि अपना सब कुछ देना इजी होता है लेकिन औरों के द्वारा कराना ये इतना सरल नहीं होता है। लेकिन मम्मा की वाणी में इतना माधुर्य था, इतना मात्र स्नेह सभी को मम्मा से जो मिलता था, सब बलिहार होने के लिए तैयार हो जाते थे। बहुत से परिवार मम्मा को देख करके, मम्मा की वाणी सुन करके सब कुछ उन्होंने यज्ञ में स्वाहा कर दिया। दूसरा, मम्मा बहुत निश्चय बुद्धि थी, उनको बाबा में ड्रामा में हर बात में जो बाबा कहे सदा मम्मा ने हाँ जी कहा। चाहे मम्मा को बाबा दिन को रात कहे या रात को दिन, हमेशा मम्मा ने कहा हाँ जी। और जो भी नियम मर्यादाएं हैं मम्मा ने उसको संपूर्ण रूप से पालन किया। ये नहीं सोचा मेरी आयु थोड़ी है अभी ये सब करने की, लेकिन मम्मा को बाबा के प्रति भी प्यार था। और बाबा जो कहता है ना, मम्मा हमेशा क्या कहती थी, हम निमित्त मात्र है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, उसके हुक्म पर हमको चलना है। तो अमृत वेले का भी महत्व मम्मा को बहुत था कि जो जिस परमात्मा को हम इतना ढूंढते थे वो मिल गया तो उसको कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसे नहीं हमारी आंख नहीं खुलती है, तो जैसे मम्मा बाबा और हमारी दादियों की ये धारणा थी, बाबा बोलते थे और मम्मा भी 4 बजे के बाद सोना माना कांटों की शैया पर सोना, तो वो सुनकर के बच्चों को नींद नहीं आती थी। और बाबा हमेशा कहते थे, आप सबने निर्मल चांता दादी से सुना होगा, वो हमेशा बोलती थी 10 तो करो बस, 10 बजे के बाद सबको सो जाना चाहिए और फिर अमृत वेले सभी को योग में आना है। पर लौकिक में कहावत है कि 2 महिलाएं अगर इकट्ठी हो जाएं और वो चुप रहें, असंभव है। अब ये 300-400 बच्चे जो थे उसमें मेजॉरिटी तो माताएं बहनें थी, कुमारियां और माताएं। कुछ लोगों की बाबा ने ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप लोग सब कमरों में चेक करना कौन देर तक जागते और बातें करते, उनका नाम नोट करके लाना, रूम नंबर भी। तो एक दिन सभी थोड़ा बहुत देर तक सोए नहीं, और किसी किसी की जैसा यहाँ पर भी ड्यूटी होती है ना, किसको किचन में जाकर चाय बनानी है, किसको नाश्ता बनाना है, तो वो अमृत वेले चाय बनाने वाली कोई उठे ही नहीं। तो उनका जो किचन था वो नीचे था, मम्मा उनके कमरों के सामने से धीरे धीरे, क्योंकि मम्मा बाबा भले वो लकड़ी का चाकड़ी पहनते थे खड़ाऊं, पर आवाज नहीं करते थे, लेकिन सभी को वाइब्रेशन आया मम्मा यहां से गई। और नीचे जाकर मम्मा ने स्वयं अग्नि जो है उस समय बना, चूल्हे होते थे ना, लकड़ी जलाई, भगोना भी रख दिया, पानी भी उबल गया, पत्ती लेकर के खड़ी थी। तब तक ये लोग मुंह हाथ धो करके भाग भाग के आए, लेकिन मम्मा तो चाय बना रही थी, काफी तो बनी चुकी थी। सब चुपचाप खड़े हो गए क्योंकि महसूस किया कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि मम्मा चाय बना रही और हम लोग सो रहे थे। मम्मा की एक विशेषता थी, कोई भी कटु वचन नहीं बोलती थी, दृष्टि से ही सिखाती थी और प्यार से उनको स्मृति दिलाई, आप सब कौन हो, आपको पता है आपके भक्तों ने उठ करके आप इष्ट देवों को स्नान भी करा दिया और आपको भोग भी लगा दिया और आप सो रहे हो। आपकी मूर्ति के आगे वो बैठे हुए क्या अनुभव कर रहे होंगे? जो आपकी स्थिति है उसका प्रभाव आपके भक्तों पर पड़ता है। आप सोए तो वो भी आपके सामने बैठे बैठे सो जाएंगे। इसलिए आप लोगों के पूर्वज हो, इष्ट देव हो, कभी भी अलबेलापन नहीं आना चाहिए। अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। उस दिन से सब इतने अलर्ट हो गए कि सचमुच मम्मा ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, आज से हम कभी मिस नहीं करेंगे। और बाबा जब बच्चों से चिटचैट भी करते थे, कभी मम्मा को बाबा के सामने हल्के रूप से किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। अगर करती भी थी मम्मा कभी तो बाबा एकदम देख करके, मम्मा तुम इनके साथ बच्ची बन गई क्या? क्योंकि एक बार मनोहर दादी बता रहे थे, हम बहुत जिद किए मम्मा को कि आपको हम दुल्हन बना के बाबा के सामने ले जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, सेहरा भी बांधेंगे, सब आप आज हमारी मनोकामना पूरी करो। मम्मा को पसंद नहीं था, पर जब मम्मा को लेकर के गए और बाबा एकदम सीरियस हो गया, बाबा को तो मम्मा की चाल पता चल जाती थी, भले वो कलर ड्रेस पहना के लाए और घूंघट में लाए, फूल मालाएं आदि डाल करके, सेहरा बांध करके, तो मम्मा को बाबा ने देख कर कहा, मम्मा ये शोभता है आपके लिए, आप भी बच्चों के साथ बचपना करती हो। वो दिन से मम्मा ने कहा, बाबा आज गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। दोबारा कभी मम्मा ने ऐसे हल्के रूप से बाबा के सामने ऐसा मजाक का कुछ ऐसा स्वांग बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बाबा मम्मा के लिए बहुत परीक्षा लेता था कि मम्मा कभी ना बोल दे, हाँ जी ही बोलती थी, चाहे वो गलत बोले तो भी हाँ जी बोलना। तो एक बार ऐसे लच्छू दादी है ना, बाबा के पास आई गार्डन में से, पत्ते पर एक चिड़िया का अंडा लेकर के आई। बाबा ये अपने बगीचे का है, इसमें चिड़िया ने हमारे बगीचे में अंडा दिया है। बाबा बड़ा रमणीक था, कुछ बच्चे बैठे थे बाबा के पास। बाबा ने कहा, अच्छा अपने बगीचे का जैसे कोई फ्रूट होता है, चलो आज मम्मा को खिलाएंगे, मम्मा खाएगी। मम्मा ने तो अपना गुण जो है, भगवान पूछ रहा है तो हाँ बोला मम्मा ने। अब उस समय जो बैठे थे सभी ने सोचा, आज ये तो गलत मम्मा ने हाँ कर दिया, फंस गई अब मम्मा, अभी अब मम्मा अगर ये अंडा खा लेगी तो क्या होगा, उनके व्यर्थ संकल्प चलने लगे। और बाबा ने बोला, मम्मा मुंह खोलो, अभी हम लोगों को कोई ऐसा बोलता है तो हम लोग छी ऐसा ऐसा करते ना। मम्मा ने जरा भी फेस को ऐसा वैसा नहीं किया, छोटे बच्चे की तरह मुंह खोल दिया। ऐसे बाबा यहां तक ले जाकर फिर बोला, पास हो गई। तो फिर प्रेम दीदी जो देहरादून में रहते थे, उन्होंने पूछा, मम्मा मेरे को तो बहुत संकल्प चल रहा था आज आपका धर्म टूट जाएगा, आपने तो हाँ बोल दिया। तो मम्मा ने कहा, देखो हमारा वायदा है, भगवान जो खिलाए वो खाना है, वो जहर भी खिलाए तो खा लेंगे। मीरा ने भी तो जहर पी लिया ना भगवान के प्यार में, तो भगवान है वो कभी गलत तो कर ही नहीं सकता, करेगा तो बाबा बोलता ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, तो तुम क्यों संकल्प चलाए, मेरा तो जरा भी संकल्प नहीं चलता है। इतना निर्संकल्प अवस्था थी। इन्हीं विशेषताओं से मम्मा जो है एक प्रकार से हम कहेंगे बाबा से भी आगे चले गए। यज्ञ में सबसे पहले मम्मा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो एक हमारे आगे मम्मा बहुत बड़ा आदर्श है कि किस तरह से आज्ञाकारी, वफादार, निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, सदा बाबा में, एक बाबा दूसरा न कोई, एक लगन में मग्न रहती थी। भले यज्ञ में शुरू शुरू में बहुत परीक्षाएं आती थी, मम्मा को मारने के लिए भी आते थे, लेकिन मम्मा इतनी योग युक्त योगिनी थी कि मम्मा के पास से वो गाली देते हुए चले जाते थे, मम्मा जो है लाइट, एकदम तेज लाइट उनको दिखती थी, तो जैसे मम्मा अदृश्य हो जाती थी उनके आगे से, लेकिन मम्मा वहीं होती थी, उनको नहीं दिखाई देती थी। और मम्मा के अंदर इतनी शीतलता थी कि जब भी मम्मा की गोद में जो बच्चे जाते थे, उनको ये अनुभव होता था जैसे कि एक बर्फ की शिला को छूने से कितनी ठंडक लगती है, कोई गर्म जगह से आए और बर्फ की शिला के पास बैठ जाए तो कितनी शीतलता आती है। ऐसे सभी ब्राह्मण वत्सों के ये अनुभव थे कि मम्मा और बाबा की शीतल गोद प्राप्त करने के बाद कभी कर्मेंद्रियों में ऐसी कोई विकारी चंचलता नहीं आई, और विकारी संकल्प भी कभी एक वर्ष तक नहीं आता था, क्योंकि हर साल बच्चे जाते थे। और उस समय तो आप सबको मालूम है यज्ञ में बहुत थोड़े से बच्चे इकट्ठे होते थे, 30-40 भी आए तो सोचते थे फुल सीजन चल रही है। और मम्मा बाबा के साथ हम भोजन भी खाते थे, हमको अभी भी याद, हम छोटे थे भले, जो निर्वैर भाई के ऑफिस के ऊपर की छत है वहां पर हमने मम्मा बाबा के साथ भोजन खाया था शाम के टाइम पर। दिन में तो हिस्ट्री हॉल ही था बाबा के सामने, तो वहां पर मम्मा बाबा सामने नीचे ही बैठते थे, कोई टेबल वगैरह नहीं होता था, तो सब लोग लाइन से बैठ जाते थे, भाई एक लाइन में, बहनें एक लाइन में, और मम्मा बाबा की थाली में भोजन आता था। फिर एक एक उठ करके बाबा से दृष्टि, फिर एक गिट्टी बाबा से लेंगे, फिर मम्मा से दृष्टि लेंगे, फिर मम्मा एक गिट्टी मुख में डालेगी, तो ऐसा लगता था छोटे बच्चों को माँ कैसे खिलाती है। ऐसे मम्मा बाबा के हाथ से खा करके सबको जो नशा चढ़ता था, जो खुशी मिलती थी, वो दुनिया के किसी वस्तु वैभव में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। तड़पते थे सभी, एक तो गोद के लिए और एक बाबा के हाथ से टोली मिले या भोजन की एक निवाला मिले, इतना सौभाग्य समझते थे कि हमने भगवान के हाथों से खाया, तो वो दिन भी कितने प्यारे थे, है ना। ये भी प्यारे हैं क्योंकि बाबा कहते आगे चल करके तो यहाँ क्यों में खड़े होंगे तो भी दर्शन भी नहीं मिलेगा, अभी तो हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन तब तो मिलना भी बंद हो जाएगा। अभी लॉकडाउन में ही देख रहे हैं ना कि हम एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते हैं ना फिजिकली। अब हमको ये साइंस वालों को ही धन्यवाद देना चाहिए कि वो कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए साधन बनाए जो हम एक दूसरे को देख सकते, सुन सकते, मिलने का अनुभव भी सभी को हो रहा है, क्लास में आने का अनुभव हो रहा है। जब थोड़े दिन कुछ साधन नहीं था तो सब लोग बेचारे कहाँ हम मुरली सुने, क्या करें, कब तक ऐसे रहें, हमारी दीदियों को भी हम नहीं देख सकते हैं, ऐसे सबके संकल्प चल रहे थे। जब से ये जूम या वेबेक्स में मुरली सुन रहे तो सभी को थोड़ी संतुष्टता आई। तो ऐसे बाबा जो है मम्मा के साथ, है ना, हर बात जो है सिखाने की जो है मम्मा को बोलते थे। जैसे बहनें जब घरों में जाती थी तो क्योंकि बचपना भी था और एकदम इतना बड़ा त्याग किया था, थोड़ी थोड़ी इच्छाएं तो रहती हैं कईयों को, तो घर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ले आती थी स्पेशल जो यज्ञ में नहीं मिलता, फिर वो पेटी में छिपा के रखते थे। समझो रेशमी कपड़े ले आए या कोई अच्छी सी क्रीम पाउडर लाए, तो बाबा मम्मा को बोलते थे, मम्मा ये लोग जब सेवा में इधर उधर जाते हैं ना नीचे अपनी ड्यूटी पर, इनके सबकी पेटी चेक करना क्या है, क्या क्या छुपाते हैं बाबा से। तो मम्मा चुपचाप जाकर के फिर बाबा को लिस्ट लिख कर ला देती, चीजें नहीं छेड़ते थे, इसकी पेटी में ये स्पेशल चीज थी जो यज्ञ से नहीं मिली हुई है, घर से लाई है। तो इस तरह से बाबा सिखाते थे कि हमें यज्ञ का पहनना है, यज्ञ का खाना है, ताकि हमें बाबा की याद आए। अगर हम लौकिक वालों का लाकर पहनेंगे खाएंगे तो क्या होगा, उनकी याद आएगी, जिसका खाएंगे उसके गुण गाएंगे। तो जो आप वहां से लाते हो वो बाबा के यज्ञ में समर्पित करो, और बाबा के यज्ञ से जो मिलता है उसको आप स्वीकार करो। ऐसे जब बहुत बैगरी पाठ चल रहा था तो जंगलों में जाकर हमारी दादियां दीदियां सभी वहां पर जो भी फल सीजनल होते, जैसे आम का सीजन है, जामुन का सीजन है, या बेर है, या करोंदे लगे होते थे, पक जाते तो फिर वो मीठे हो जाते। वही जैसे बोलते ना, बहुत बड़े बड़े सन्यासी जो तपस्या करे जंगलों में कंदमूल खा करके, क्योंकि यज्ञ में भोजन खाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो वो लोग एक टाइम जंगल में खा करके थोड़ा बहुत ले आते थे, जितना उठा सकते हैं, दोपहर में भी वो खा लिया, शाम को सबको आधी रोटी और दाल भी कैसी, आप सोचो एक या दो किलो दाल 400 लोगों में, वो तो पानी जैसी दाल है, सिर्फ नमक मिर्ची होती थी उसमें और कुछ भी नहीं। तो सबको बाबा मनोहर दादी को बताए थे कि आप सबको भोजन बांटना है, और आधी रोटी के साथ इतनी इतनी दाल एक कड़छी जो है देते जाओ, उतना ही मिलता था। बाबा मामा सबसे लास्ट में खाते थे। तो एक दिन एक माता बेचारी बुजुर्ग थी, उसको दांत नहीं थे, तो बोला थोड़ा सा और दाल दो, क्योंकि घी आदि तो होता नहीं था, रोटी भी आप सूखी रोटी खाएंगे तो थोड़ी देर में कड़क हो जाती है, और जिनको दांत नहीं है उनको तो बहुत नरम करके डुबा के, काफी देर डुबा के फिर खाना होता है। तो मनोहर दादी ने बोला कि नहीं, ये तो मम्मा और बाबा के हिस्से की दाल है, मैं नहीं दूंगी। मम्मा बाबा ने उसी समय कहा, बाबा ने वो रोटी हाथ में लेकर, देखो बच्ची मैं तो ऐसे भी खा सकता हूँ, तुम इसको दे दो मेरी दाल। तो फिर वो बहुत रोई, पूरी रात सोई नहीं, तकिया गीला हो गया। बहनों ने जाकर मम्मा को बताया कि मनोहर दादी तो बिल्कुल रो रही है, उठी नहीं, खाई नहीं। मम्मा ने बुलाया तो कहा, देखो तुम्हारे ना खाने से और रोने से कोई चरित्र बनने वाला नहीं, बाबा ने दाल नहीं खाई, ये एक बहुत बड़ा चरित्र बनेगा भागवत का। उस समय ये दादियों ने पहले जो दिल्ली में थोड़ी बहुत सेवा स्टार्ट की थी, यमुना के किनारे पर बैठकर, आप सबने सुना भी होगा, 3-4 दादियां वहां बैठकर तपस्या करते थे, फिर कुछ पहलवान लोग देखते थे ये लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पर रहना इनका, उन्होंने एक दिन इनको भोग लगाने के लिए भी कुछ कुछ लेकर आए थे, तो बताया हम नहीं खाते। फिर उनको मंदिर में सेवा शुरू की, फिर वो मंदिर वाले ने भी निकाल दिया, फिर एक माता ने एक कमरा और एक छोटा सा किचन किराए, माना किराए का मकान लेकर दिया। और इनके पास क्या था, सिर्फ नमक और आटा, बस रोटी पकाना, 4 टुकड़े करना, उसी समय गरम गरम खा लेना, और दिन भर सेवा करते थे। एक दिन वो माता को ऐसे कभी किसी को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि इनको फिर पता चलेगा हमारे पास कुछ नहीं है। उसने धक्का लगाकर देखा कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, बहुत रोई वो कि ये बहनें सूखी रोटी खाकर हमें तो घी मक्खन खिला रही हैं, जैसे गाय घास खा के दूध देती मक्खन देती। तो उसने फिर सभी क्लास वालों के बीच में बोला, आप इतने बड़े बड़े सेठ हो, मुरली सुनते हो, आपको पता है ये बहने क्या खाती, इनके पास कुछ भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, एक बेलन था और एक प्लेट के ऊपर वो लोग रोटी बेलते थे, एक प्लेट में रोटी रख के ऐसे हाथ में पकड़ के खाते थे। बाबा ने कहा था मांगने से मरना भला, मांगना भी नहीं है और बताना भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर तो सबको ऐसा अंदर से आया, अरे इतना त्यागी बहने हैं, सबने अनाज वगैरह सब कुछ भर दिया। तो एक घी का व्यापारी था, तो जानकी दादी ने उसको ज्ञान सुनाया, उसने घी का डब्बा दिया, ये लोग सब है ना बाबा के पास पहुंचा दिए। और उस समय ट्रेन टिकट भी नहीं लिया। बाबा ने पूछा अगर कोई पकड़ता तो हम बोलते थे हम तो भगवान के लिए लेके जा रहे, अरे भगवान का नाम बदनाम होता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। फिर उस समय जब ये बात हुई, बाबा ने दाल नहीं खाई, तो मनोहर दादी ने एक पोस्ट कार्ड में लिख करके भेजा कि आज मम्मा बाबा को दाल नहीं मिली, मुझे बहुत रोना आया, और एक आंसू टपक गया उस पोस्ट कार्ड के ऊपर। वो पढ़ करके बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने सबने प्लान बनाया कि हम यज्ञ में भेजेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन आपने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में भी सुना होगा कि मम्मा ने कहा कि बाबा आज तो हुंडी में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा मम्मा निश्चिंत रहो, आज दोपहर में एक ट्रक आएगा, तुम सेवाधारी अनलोडिंग के लिए रेडी रखना, ट्रक आएगा और सब कुछ साफ सुथरा अनाज आएगा, आटा पिसा हुआ आएगा, 1 बजे सब बच्चों को पेट भर के भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी, सब भोजन खाएंगे आज। तो सब लोग हंस रहे थे कि ना जैसे बुजुर्ग लोगों को तो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, तो हंसने लगे। मम्मा फिर सीरियस हो गई कि देखो आप सब 11 बजे यहाँ ट्रक आने वाला, रेडी रहना। कोई नहीं रेडी हुआ। बरोबर 11 बजे ट्रक आया, लकड़ी भी थी, घासलेट भी था, तेल के डब्बे, सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक बार जब ये लोग जंगल में फल खा रहे थे, उस समय होली आने वाली थी, तो बाबा ने कहा मम्मा अपने सारे बच्चों को ना होली के दिन ना जलेबी खिलानी है। मम्मा को तो आपको बताया ना निश्चय बुद्धि थी कि भगवान कह रहा है तो उसका कुछ प्लान है। मम्मा ने कहा जी बाबा, और सब लोग हंस रहे थे, 4 आना भी नहीं है हुंडी में, हम 400 लोगों को जलेबी कहां से मिलेगी। लेकिन उस समय एक बहुत बंधन वाली माता नीचे से आबू रोड से आती थी, सिंधी थी, वो ही थोड़ा बहुत यज्ञ में मदद करती थी, परंतु मौका देख करके आती थी जब उसका पति इधर उधर जाए। तो अभी बाबा ने क्या किया, उसके पति को विष्णु का भक्त था, स्वप्न में बाबा ने उसको साक्षात्कार कराया, विष्णु रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा बच्चे उठो। उस समय आप सोचिए पैसे की वैल्यू कितनी थी, तुम्हारी पत्नी जहां जाती है उस आश्रम में 500 रुपया भेजो, मेरे बच्चों को जलेबी खिलानी है। तो एक बार तो वो चौंक गया कि विष्णु जी मेरे कमरे में आए और मुझे बोला जी जी मैं दूंगा। फिर सोचा कोई तो ये मेरी औरत तो नहीं ऐसे स्वांग करके ऐसे ड्रेसिंग करके आई है, उठ के भागा उसके कमरे की तरफ। अभी कोई भी अगर पहना होगा तो उतारने में टाइम लगता है, उसके कमरे का पर्दा उठा के देखा तो वो तो सो रही है। फिर दोबारा विष्णु जी आए, फिर बोला कि तुम क्या सोच रहे हो, उठो स्वयं भगवान बोल रहा है, तो विष्णु रूप में बोल रहे हैं। तो फिर सोचा, फिर देखा उसको, फिर लगा नहीं ये तो भगवान मेरे से कुछ कराना चाहता है, तो उसको उठाया, उठो तुम्हारा भगवान जो है ना विष्णु रूप में आया और मेरे से बोला जलेबी, तो ये 500 रुपए का जलेबी ही बनाना, उनका भगवान का आज्ञा है। तो बोली बहुत खुशी की बात है। तो अपने पास भी जो था वो लेकर के, उसको मालूम था ये टाइम पर ये लोग जंगल में ही मिलेंगे, और बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा तुम्हारी भक्त उस तरफ से आ रही है, तुम मिलो। मम्मा कहती थी बाबा आपकी बच्ची है, मेरी भक्त क्यों कहते हो। तो बाबा बोलता है बच्ची देखो माताएं है ना तुम्हारे साथ अच्छे से दिल की बात करेंगी, वो बांधेली है जाओ आप। वो इतना खुशी से नाचते नाचते आ रही थी मम्मा की तरफ, मम्मा आज तो कमाल हो गई, आज मेरे पति को बाबा ने कैसे पकड़ा, उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ और विष्णु ने बोला उसको कि मेरे बच्चों को जलेबी खिलाओ, तो ये अमाउंट दिया है। तो इस तरह से मम्मा ने कभी भी डाउट नहीं किया कि बाबा क्या बोल रहा है, टाइम कौन सा है, घर में है नहीं ये दाने और ये अम्मा चली बुनाने और बाबा ये बड़ी बड़ी बातें करता, जलेबी खिलाओ ये खिलाओ। तो सबको वंडर लगता था मम्मा का निश्चय देख करके कि कमाल है, मम्मा कभी भी ऐसा डाउट नहीं करती और हम लोग क्यों ऐसे हैं। तो बाबा भी बच्चों को कई बार कई डायरेक्शन ऐसे देते थे, अभी जैसे गर्मी का सीजन है, तेज धूप है और छत पर गेहूं सुखा रहे थे, बाबा भी चढ़ के गए ऊपर, बोला बच्चे ये गेहूं समेट लो, बहुत जोर से बारिश आने वाली है। तो सब लोग ऐसा समझते हैं ना, बूढ़े लोगों का थोड़ा दिमाग खिसक जाता है, किसी ने केयर नहीं की, बाबा तो चला गया बोलकर कमरे में, और वो ये लोग भी गेहूं ऊपर से उठा के नहीं नीचे ही आ गए, सभी उठाया नहीं। एक सेकंड में इतना जोरदार बारिश आई, सारी गेहूं भीग गई। बाबा को मालूम पड़ा, बाबा ने कहा देखो बच्चों को ये भी निश्चय नहीं है कि कौन कहता है, ये शिव बाबा कहता है या ब्रह्मा बाबा, ये लोग सोचते ये बूढ़ा है इसको क्या पता चलता है जो भी बोलता है, ये तो वो बोल के गया था। तो मम्मा इसलिए हमेशा ये सोचती थी कि ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहा है, लेकिन शिव बाबा ही हमारे लिए जो भी शिक्षाएं दे रहे हैं, ये बाबा की शिक्षाएं हैं, ये बाबा का प्यार है, इसलिए हमको जो बाबा कहे वो मानना है, बाबा के हुक्म पर चलना है। इसलिए और मम्मा को बाबा की मुरली में भी इतना रिगार्ड था, मम्मा जानती थी कि बाबा की बातों को बच्चे इतना गहराई से अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे, नहीं समझ सकते हैं। मम्मा फिर रात भर मनन चिंतन 2 बजे से फिर मुरली लिखती थी, और फिर दूसरे दिन बाबा से पहले मम्मा स्टेज पर आकर के पूरा कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा उसका स्पष्टीकरण करती थी, और उसके बाद हम देखते थे कभी बाबा जल्दी आ जाते थे तो मम्मा खड़ी हो जाती थी। जैसे आज की दुनिया में भी आप देखेंगे कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो उसके नीचे वाले सब जो भी काम भी कर रहे होंगे छोड़ के खड़े हो जाते, रिगार्ड इतना। एक बार हमको बटी में आशा दीदी वगैरह सभी बोल रहे थे देखो दादी आती है कोई भी दीदी, हम लोग खड़े नहीं होते, दुनिया में देखो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो आता है उसके लिए कितना सम्मान होता है। तो मम्मा को इतना रिगार्ड रहता था, बाबा बोलता था मम्मा चालू रखो, मम्मा बोलती नहीं बाबा अभी आप सुनाएंगे हम सुनेंगे। तो जितना मुरली और अमृत वेले का अपने जीवन में मम्मा ने महत्व रखा, इन बातों से मम्मा जो है तीव्र पुरुषार्थ करके संपूर्ण और संपन्न बनी। तो ये जून मास में मम्मा की सब बातें हम भी स्मृति में रख करके जितना हो सके उतना हम जल्दी जल्दी संपूर्ण और संपन्न बने, क्योंकि अभी समय का इशारा जो बाबा ने बहुत काल से दिया हुआ था, हमने किस किस प्रकार से उसको विजुअलाइज किया था ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने बताया ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, बहुत लोग मरेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं होगा, हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये ऐसा कोरोना आएगा COVID-19 ये सब हमको पता था क्या कि ऐसी बीमारी। हमको जब बाबा ने कहा खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो हमने सोचा ग्रह युद्ध होंगे, फायरिंग होगी, इसलिए खिड़कियां बंद करके अंदर रहना होगा, कर्फ्यू लगेगा। लेकिन सारी दुनिया पर कर्फ्यू लग जाएगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे हम सब बंद हो जाएंगे ये भी नहीं सोचा था। सभी सेंटरों पर जाना मना हो जाएगा, लेकिन बाबा ने जो कहा है बच्चे घर घर गीता पाठशाला बन जाएगी। हम लोग सोचते थे घर घर में क्या जरूरत पड़ती, हर घर में माना हमारी गली में चार लोग रहते हैं, अब चार सेंटर एक गली में गीता पाठशाला, तो सेंटर पे कौन आएगा। तो देखो बाबा के मुरली का रहस्य हम किस तरह से समझते, और मम्मा उसको बहुत गुह्यता से समझती थी। आज हमको समझ में आ रहा है कि ये समय के लिए बाबा ने कहा था, अब घर घर गीता पाठशाला बन गई ना। किसी ने हमको सुनाया जोक, कोरोना जो है बाबा से बात कर रहा है, बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपके सारे सेंटर बंद करा दिए, ताले लगा दिए। बाबा बोला थोड़ा देख तेरे को समझ में नहीं आया, मैंने घर घर में सेंटर खोल दिए, सेंटरों को ताले नहीं लगे लेकिन घर घर में सेंटर खुल गए हैं, तो बाबा के सेंटरों की वृद्धि हो गई, खुशी की बात है ना। तो आप सब भी ऐसा अनुभव करते, हमारा घर ही सेंटर बन गया। क्योंकि देखो वैसे हम आप सबके घरों में नहीं आ सकते, एक दिन में एक के घर में गए तो बहुत बड़ी बात है। अब इतने सारे बाबा के बच्चे अपने घर से मुरली सुन रहे, हम सबका घर भी देख रहे, सबको उनके घर में देख रहे हैं, और आप बाबा के घर को देख रहे हो, तो ये कितना अच्छा है। ये बाबा की बोली हुई बातें अभी हमें याद आती हैं कि भगवान ने जो कहा, बाबा कहते ना भक्ति में तो आप गलत सुन के भी सत्वचन बोलते थे, अब बाबा के सत्य वचन सचमुच सत्य वचन है, वो प्रसिद्ध हो रहे सिद्ध हो रहे हैं। तो अभी बाबा ने कितनी बड़ी रूहानी शक्ति सेना पांडव सेना को तैयार किया है। ये समय है हम सबको, जो हम मम्मा बाबा से दादियों से पालना ली है, और जो बाबा ने कहा हुआ है कि लास्ट में आप सबकी प्रत्यक्षता होगी, एक तरफ दुनिया में हाहाकार होगी और दूसरी तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। तो मम्मा की चाल चलन को देख करके सभी इतने प्रभावित होते थे कि जो मारने वाले भी आ जाए तो भी जब मम्मा की वाणी सुनते थे, मम्मा को चलते हुए देखते थे, तो उनको लगता था कि कोई देवी चलकर आ रही। तो हमें भी बाबा हमेशा कहते, बाबा की प्रत्यक्षता भाषणों से नहीं होगी, लेकिन आपकी दिव्य चलन और आपका दिव्य चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बनेगा। अभी हमको बाबा ने समय दिया है, हम अपनी चेकिंग करें और अपने आप को चेंज करें। बाबा हमेशा कहते दूसरों को देखने का आपकी नजर जो है ना दूर की बहुत अच्छी है, लेकिन अपने आप को देखने की नजर कमजोर है। हम अपने पर ध्यान दें कि हम कहां तक बाबा की सब बातों को अपने जीवन में अपने स्वरूप में लाते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे मुझे ध्यानी से ज्ञानी आत्माएं पसंद, ज्ञानी से योगी आत्मा ज्यादा पसंद है, क्योंकि योगी वही बनता है जो बाबा की ज्ञान की बातों को अपने स्वरूप में लाता है, उसके स्वरूप को देखकर सबको बाबा की याद आती है। तो जैसे मम्मा बाबा को आज भी हम भले फिजिकली हमारे सामने नहीं है, पर उनके चरित्रों की स्मृति उनके चित्रों द्वारा हमें वो वाइब्रेशन मिलते हैं। आज भी हम उनको देख करके ये प्रेरणा लेते हैं, त्याग तपस्या देखना हो तो मम्मा बाबा का। मम्मा भोजन के लिए भी बहुत बच्चों को सावधानी, आजकल देखिए बाबा मुरली में ज्यादातर सब कितनी बार सुनाया कि कई बच्चे पूछते शादी कर लें, हाँ बाबा हम बहु लाले, हम भोजन का हमारे को तकलीफ है, हम क्या खाएं, तुम्हारे को जो खाना है, मैं बीड़ी नहीं छोड़ सकता, ये नहीं, जो पीना है पियो, जो खाना है खाओ, है ना। बाबा ने तो फिर ऐसा बोल देते ना, जैसे लौकिक माँ बाप के भी बच्चे अगर उसका कहना नहीं मानते, तुमको जो मर्जी में आए करो। लेकिन श्रीमत तो ये है, बाबा ने बताया विकार में नहीं जाना और तामसिक भोजन नहीं खाना है, देवता बनना है तो ये सब नहीं खाना है, अंडरस्टूड है। नहीं समझ में आता है तो पूछते हैं, पूछते हैं मना कमजोर है। मम्मा बोलती थी देखो कभी ऐसी परिस्थिति आए, कुछ भी नहीं है, साधन भी नहीं है आपके पास, आप जंगल में भी हो तो लकड़ियां लगाओ, आटा ले आओ और आटा भिगा करके और नीचे जमीन गर्म हो जाए उस पर रोटी पका लो, केला लो और केले के साथ रोटी खा लो, पेट ही तो भरना है। तो इतना सिंप्लिसिटी मम्मा के अंदर थी, ना खाने पीने में आसक्ति, ना अपने लिए कोई उनको कि मुझे कुछ चाहिए, ये इच्छाओं से बाबा मम्मा बिल्कुल अतीत थे, इसलिए कर्मातीत हुए। अभी हमको भी ये समय सिखा रहा है, आज सब लोग भी अपने अनुभव में सुनाते, हम बहन हम क्या अभी तो सिंपल से सिंपल कपड़े पहनते, जिसको स्त्री की जरूरत ना पड़े, स्टार्च की जरूरत ना पड़े ऐसे, और जेवर जो है लॉकर्स में पड़े हैं, ना जेवर पहनने का टाइम, ना महंगे कपड़े वो अलमारियों में लटक रहे हैं। अब लोगों को भी भले शमशानी वैराग्य आया, आया तो सही, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया, बच्चे जब तक आप बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी, तब तक यह सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। अभी भी कई बच्चों में हद का वैराग्य आया है, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये भी बताया हुआ है, बच्चे बहुत विनाश का ऐसी हलचल होगी जो सब समझेंगे बस अब तो दुनिया गई की गई। लेकिन फिर ऐसा समय आएगा इस हलचल के बाद कि बिल्कुल शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। फिर जब सब बच्चों के दिल में ना होगी, तब ड्रामा की हाँ होगी, तब विनाश होगा, तब परिवर्तन होगा। इसलिए कभी भूल से भी ये संशय में नहीं आना कि विनाश नहीं होगा, क्योंकि जैसे दुनिया में भी कई बार कोई पेशेंट जाने वाला होता है, जब उसका जाने का समय होता है ना, उस दिन वो बहुत अच्छे तरह से दवाई भी खाता है, भोजन भी खाता है, अच्छी बातें करता है, सब सोचते हैं ये अच्छा हो गया आज तो ये, और अचानक उड़ जाता है पंछी, बल्ब भी फ्यूज होने से पहले बहुत जोर से चमकता है, अचानक फ्यूज हो जाता है। ऐसे ये दुनिया भी जाने से पहले अपना एक ऐसा रंग दिखाएगी, ऐसा एक रूप जिसको मोहिनी रूप कहें या स्वर्ण मृग के रूप में हमारे सामने आकर्षण के ऐसे रूप लाएंगी, बहुत सब कुछ फ्री मिलेगा, प्रकृति दासी हो जाएगी और उसमें कई बच्चे भी है ना उस आकर्षण में आ जाएंगे कि हमको तो सब मिल गया, विश्व की बादशाही यहाँ मिल गई। लेकिन विश्व की बादशाही ये नहीं है कि हमें गाड़ियां मिल जाएं, हमें मकान मिल जाएं फ्री में, धर्मशालाएं मिल गई, कुछ नहीं। हम तो सारे विश्व पर राज्य करने के लिए राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो अपने अंदर जितना त्याग तपस्या की भावना होगी, उतना हमारे द्वारा बाबा निमित्त बनाकर बहुत सेवा कराएगा, और इतना हमारा बाबा के साथ हमारी भी प्रत्यक्षता होगी, है ना। शिव बाबा और उसकी शक्ति सेना, उसकी पांडव सेना लोगों को जब प्रत्यक्ष में दिखाई देगी कि किनका गायन था, हम कौन से पांडवों को देख रहे थे, हम कौन सी शक्ति सेना देख रहे थे, वास्तव में तो ये है शक्ति सेना, पांडव सेना। क्योंकि मम्मा को कभी किसी का फूल माला या स्वागत भी पसंद नहीं था, मम्मा और बाबा को हमेशा बोलते थे आप चैतन्य फूल हो ना, हमें ये फूलों की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हम जितनी सादगी लाएंगे, अंदर से भी इच्छा ना हो, मेरा मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई भी स्वागत करे या सम्मान करे। हम बोलते जो बाबा मामा ने स्वीकार नहीं किया, हमारी दादियां स्वीकार नहीं करती, तो वो हम क्यों स्वीकार करें। तो जितना सिंपल उतना हम सैंपल बनेंगे। तो हमेशा याद रखना, हमें आदर्श ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। ओम शांति। आप सबको ड्यूटीज पर जाना ऐसा हमें रजनी बहन ने कहा, इसलिए मुरली भी जल्दी समाप्त की। और आप सबको निमंत्रण है कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद पूरा ही नागपुर जोन वाले रजनी बहन सबको लेकर के आना और हम भी आएंगे, क्योंकि एक बार ओपनिंग पर आए फिर आए नहीं। बहुत दिल होता है क्योंकि मेरा पुष्पा रानी दीदी से बहुत बहुत प्यार था और मेरा सौभाग्य उनकी अंतिम यात्रा के समय में उनके सन्मुख ही थी। तो वो दिन भी मुझे भी भूलता नहीं है कि बहुत हमने भावभीनी विदाई दी थी दीदी को। दीदी हमारे दिल पर बहुत अमिट छाप छोड़कर गए और उनके पास तो अनेक अनुभवों की खान थी। बहुत कुछ सीखा हमने, इतनी अथक इतना उमंग उत्साह था जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सब इतने सब उनकी सेना तैयार हुई है। और उनके प्यार में आप सब भी सदैव ऐसे बंधे रहना, एक मत और एक रस अवस्था बनाकर, क्योंकि हम क्या साथ ले जाएंगे। हमारा ये स्नेह, हमारी ये एकता यूनिटी जो है सतयुग में हमें एक धर्म एक राज्य की प्राप्ति कराती। जितना हम यहाँ स्नेह युक्त संबंध रखेंगे उतना बाबा मम्मा के समीप रहेंगे वहां पर भी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रजनी बहन।
नहीं दीदी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे वीराने में बाहर छा गई हो और दीदी की यादें जो आ रही थी, मैंने कहा सचमुच दीदी आज कुछ सुना के गए और हमें भरपूर कर दिया दीदी आपने। बहुत बहुत थैंक्स है दीदी आपका, बहुत बहुत थैंक्स। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और अगर कभी चांस मिले तो अवश्य ऐसा ही हमें आप लाभान्वित करना, यह हमारी आशा जरूर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको।
ओके, ओम शांति।
ओम शांति दीदी।
चलो एक मिनट पापा की याद में।